मेरा दूसरा चैप्टर है चार्वाक दर्शन। इसका पहला टॉपिक है उत्पत्ति और प्रतिपाद्य विषय। जड़वाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। इसके अनुसार मन तथा चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से ही होती है। जड़वादियों की एक साधारण प्रवृत्ति यह है कि वे ईश्वर, धर्म, आत्मा आदि उच्च तत्वों को जड़ जैसे निम्न तत्वों में परिणित करने का प्रयत्न करते हैं। वे जड़ को भी सभी पदार्थों का मूल समझते हैं। अतः जड़वाद की दृष्टि आध्यात्मिक से प्रतिकूल है। जड़वाद भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इसका उल्लेख वेदों में, बौद्ध ग्रंथों में, पुराणों तथा दार्शनिक ग्रंथों में पाया जाता है, किंतु जड़वाद पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। अन्य दर्शनों की तरह इसके समर्थकों का न तो कोई सुसंगठित संप्रदाय ही मिलता है और न कोई ग्रंथ ही, लेकिन प्रत्येक भारतीय दर्शन में चार्वाक मत अर्थात जड़वाद का खंडन किया गया है। मुख्यतः इसी से चार्वाक मत का परिचय मिलता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में जड़वाद के लिए प्रायः चार्वाक शब्द व्यवहित होता है। चार्वाक शब्द का मूल अर्थ क्या था इसका पता नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि चार्वाक एक ऋषि का नाम था जिन्होंने जड़वाद का प्रतिपादन किया था, अतः उनके अनुयायी भी चार्वाक कहलाए। इस तरह जड़वादी का दूसरा नाम चार्वाक हो गया। अन्य विद्वानों का कथन है कि चार्वाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। चार्वाक शब्द चर्व धातु से निष्पन्न है। चर्व का अर्थ चबाना या भोजन करना है। चूंकि चार्वाक मत में खाने पीने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम चार्वाक पड़ा है। चार्वाकों का कहना था पिब खाद चवर लोचने इत्यादि। अन्य विद्वान कहते हैं कि जड़वादियों को चार्वाक नाम इसलिए दिया गया है कि उनके वचन बड़े मीठे होते थे, चारु अर्थात सुंदर वाक होने के कारण वे चार्वाक कहलाए। कुछ अन्य विद्वान यह कहते हैं कि जड़वाद के प्रवर्तक बृहस्पति थे। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण दिए जाते हैं। पहला, लोक के पुत्र बृहस्पति जिन वैदिक ऋचाओं के ऋषि हैं उनमें स्वतंत्र विचार और विद्रोही की लहर है। दूसरा, महाभारत तथा अन्य कतिपय ग्रंथों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि जनवादी विचारों का समर्थन बृहस्पति ने किया है। तीसरा, कतिपय विद्वानों ने कुछ ऐसे सूत्रों तथा श्लोकों का उल्लेख किया है जिन्हें बृहस्पति प्रणीत समझते हैं। कुछ विद्वानों का तो कथन है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने चार्वाक मत का प्रचार देवताओं के शत्रुओं में अर्थात दानवों में किया था। उनके प्रचार का अभिप्राय यह था कि चार्वाक मत के उपदेशों के अनुसार चलने से नवों का आप से आप नाश हो जाएगा। भारतीय जड़वाद के प्रवर्तक जो कोई भी हो, वर्तमान समय में चार्वाक जड़वादी का पर्यायवाची शब्द हो गया है। जड़वाद को लोकायत मत भी कहते हैं क्योंकि यह लोगों में आयत या विस्तृत है, इसलिए जड़वादी को लोकायतिक भी कहते हैं। यों तो जड़वादी विचारों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में जहां तहां पाया जाता है, फिर भी हम उन विचारों को एक सुगठित रूप दे सकते हैं तथा उनमें जो प्रमाण विज्ञान, तत्व विज्ञान तथा नीति विज्ञान संबंधी सिद्धांत हैं उनका पृथक पृथक वर्णन कर सकते हैं। मेरा दूसरा टॉपिक है प्रमाण विचार। चार्वाक दर्शन मुख्यतया अपने प्रमाण संबंधी विचारों पर ही अवलंबित है। प्रमाण विज्ञान की प्रधान समस्याएं ये हैं, हमारे तत्व की सीमा क्या है, उनकी उत्पत्ति एवं विकास कैसे होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रमाण हैं, विभिन्न प्रमाणों का विचार भारतीय प्रमाण विज्ञान का एक प्रधान अंग है। तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा के कारण को अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमाण कहते हैं। कितने प्रकार के प्रमाण हैं इन विषय में भारतीय दार्शनिकों में मतभेद है, जो क्रमशः स्पष्ट होगा। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इनके अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वास योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। इस मत के प्रतिपादन के लिए चार्वाक अनुमान तथा शब्द जैसे प्रमाणों का खंडन करते हैं। पहला, अनुमान निश्चयात्मक नहीं है। अनुमान को हम प्रमाण तभी मान सकते हैं जब इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान संख्य रहित हो तथा वास्तविक हो, किंतु अनुमान में इन बातों का सर्वथा अभाव है। जब हम धर्मवान पर्वत को देखकर इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि पर्वत वाहग्निमान है, तो हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष पर चले जाते हैं। न्यायिकों के अनुसार इस प्रकार का प्रमाण सर्वथा युक्तिपूर्ण है, क्योंकि धूम तथा अग्नि में व्याप्ति का संबंध वर्तमान है। अतः हम कह सकते हैं कि जितने धूमवान पदार्थ हैं वे सभी वाहग्निमान हैं। पर्वत धूमवान है, अतः पर्वत वाहग्निमान है। चार्वाकों का कहना है कि अनुमान तभी युक्तिपूर्ण तथा निश्चयात्मक हो सकता है जब व्याप्ति वाक्य सर्वथा निसंदेह हो, क्योंकि व्याप्ति वाक्य में ही लिंग का साध्य के साथ पूर्ण व्यापक संबंध स्थापित रहता है। धूमवान पर्वत को निश्चयात्मक ढंग से वाहग्निमान तभी मान सकते हैं जब सभी धूमवान पदार्थ वास्तव में वाहग्निमान हो। सभी धूमवान पदार्थ वाहग्निमान हैं, ऐसे हम तभी सिद्ध करते हैं जब सभी धूमवान पदार्थों को और उनके साथ वाहग्नि के संबंध को भी देख सकें। किंतु यह सर्वथा असंभव है। भूत तथा भविष्य की तो बात ही क्या, वर्तमान समय में भी संसार के भिन्न भिन्न भागों में जो धूमवान पदार्थ है उन्हें भी हम नहीं देख सकते। अतः यह स्पष्ट है कि हम प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति की स्थापना नहीं कर सकते। अनुमान के द्वारा हम इसे स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस अनुमान के द्वारा हम इसकी स्थापना करेंगे उसकी सत्यता भी व्याप्ति पर ही निर्भर करती है। इस तरह यहाँ अनन्याश्रय दोष हो जाता है। व्याप्ति की स्थापना हम शब्द के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शाब्दिक प्रमा भी अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होती है। दूसरी बात यह है कि यदि अनुमान सदा शब्द प्रमाण पर ही निर्भर हो तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने आप से अनुमान नहीं कर सकता, उसे सर्वदा किसी विश्वास योग्य व्यक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा। यहाँ यह प्रत्युत्तर दिया जा सकता है कि हम सभी धूमवान तथा वाहग्निमान पदार्थों को देख नहीं सकते हैं, किंतु उनके सामान्य धर्मों को अर्थात धूमत्व तथा वाहग्नित्व को अवश्य देख सकते हैं। अतः सभी धूमवान पदार्थों तथा वाहग्निमान पदार्थों को बिना देखे भी धूमत्व तथा वाहग्नित्व में नियत संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस तरह संबंध स्थापित करके किसी भी धूमवान पदार्थ को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि यह वाहग्निमान है। चार्वाक इस युक्ति का खंडन भी करते हैं। वस्तुतः प्रत्यक्ष के द्वारा धूमत्व का ज्ञान संभव ही नहीं है। धूमत्व तो एक जाति या सामान्य है जो सभी धूमवान पदार्थों में वर्तमान है। अतः जब तक सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्ष न हो तब तक उनके सामान्य का ज्ञान नहीं हो सकता, किंतु सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अतः धूमत्व केवल उन धूमवान पदार्थों का सामान्य समझा जाएगा जिन्हें हमने देखा है, अर्थात धूमत्व अप्रत्यक्ष धूमवान पदार्थों का सामान्य नहीं माना जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों को देखकर व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि संसार में कोई निश्चित सर्वव्यापक नियम नहीं है तो सांसारिक वस्तुओं में नियमितता क्यों पाई जाती है? आग का सर्वदा गर्म क्यों रहती है? जल सदा शीतल क्यों रहता है? चार्वाक इसका उत्तर यह देते हैं कि यह वस्तुओं का स्वभाव है। वस्तुओं के प्रत्यक्ष धर्म को समझने के लिए किसी अप्रत्यक्ष नियम की कल्पना करना अनावश्यक है। यह सर्वथा अनिश्चित है कि वस्तुओं में जो नियम अतीत में पाया गया है वह भविष्य में पाया जाएगा। आधुनिक तर्क विज्ञान से यह प्रश्न आ सकता है कि क्या धूम तथा वाहग्नि कार्य कारण संबंध की व्याप्ति कार्य कारण संबंध के अनुसार स्थिर नहीं की जा सकती? चार्वाक इसका यह उत्तर देते हैं कि कार्य कारण नहीं हो सकती है। संबंध भी एक व्याप्ति है, अतः इसकी स्थापना भी उपयुक्त कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है। चार्वाक साथ साथ यह भी उत्तर देंगे कि दो वस्तुओं को कई बार साथ साथ देखकर हम कार्य कारण संबंध या अन्य किसी व्याप्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए यह जान लेना आवश्यक होता है कि उन दोनों वस्तुओं का साहचर्य किसी अलक्षित कारण या अन्य उपाधि पर तो निर्भर नहीं करता। कोई व्यक्ति कई बार अग्नि को धूम के साथ देखता है, उसके बाद वह केवल अग्नि को देखकर धूम का अनुमान करता है। यहाँ दोष की संभावना रह जाती है, क्योंकि यहाँ उपाधि की अवहेलना की गई है। जैसे ईंधन की आर्द्रता, अग्नि के साथ धूम तभी हो सकता है जब ईंधन आर्द्र रहे। जब तक दो वस्तुओं का संबंध उपाधि रहित नहीं हो, तब तक वह अनुमान का सही आधार नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष के द्वारा यह सिद्ध नहीं हो सकता कि कोई व्याप्ति उपाधि रहित है, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यापक नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि प्रत्यक्ष के द्वारा सभी उपाधियों का ज्ञान प्राप्त हो। उपाधि निराश के लिए अनुमान या शब्द की सहायता लेना भी अनुचित होगा, क्योंकि वे तो स्वयं संदिग्ध हैं, और जो स्वयं असिद्ध है वह दूसरे का साधन कैसे कर सकता है। स्वयं असिद्ध कथम परान साधयति। यह सत्य है कि हम अनुमान के अनुसार निशंक अपना कार्य करते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल यह होता है कि हम बिना विचारे अनुमान की सत्यता मान लेते हैं और उसी भ्रांत धारणा पर काम करते हैं। यह ठीक है कि कभी कभी काकताली न्याय से संयोगवश हमारे अनुमान सही नहीं निकलते, किंतु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि अनेक बार वे गलत भी पाए जाते हैं। अतः हम नहीं कह सकते कि अनुमान अवश्य ही प्रमाणिक होना स्वाभाविक धर्म नहीं है। कुछ अनुमान प्रमाणिक होते, कुछ नहीं भी होते हैं। नंबर दो, शब्द भी प्रमाण नहीं है। क्या योग्य या प्रवीण व्यक्तियों का शब्द प्रमाण नहीं है? क्या विश्वास योग्य पुरुषों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार हम अपने कार्य नहीं करते हैं? यहाँ चार्वाक यह उत्तर देते हैं कि विश्वास योग्य व्यक्तियों से ज्ञान शब्द के रूप में मिलता है, और शब्दों का सुनना तो प्रत्यक्ष है। इस तरह शब्द ज्ञान दो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, इसलिए इसको प्रमाणिक मानना चाहिए। किंतु यदि शब्द से ऐसी वस्तुओं का बोध हो जो प्रत्यक्ष से बाहर हो, अर्थात यदि शब्द से अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध दोष रहित नहीं कहा जा सकता, तथा कथित शब्द प्रमाण मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है। अनेक व्यक्तियों को वेद में, किंतु वेद क्या है? वेद तो उन धूर्त पुरोहितों का कृत्य है जिन्होंने अज्ञान तथा विश्वास परायण मनुष्यों को धोखे में डालकर अपनी जीविका का प्रबंध किया है। इन पुरोहितों ने झूठी झूठी आशाएं तथा झूठे झूठे प्रलोभन देकर मनुष्यों को वैदिक कर्मों के अनुसार चलने को प्रेरित किया है। इन कर्मों से लाभ केवल पुरोहितों को होता है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, यदि हम अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति के शब्दों में विश्वास नहीं कर सकेंगे तो क्या हमारा ज्ञान अत्यंत संकुचित नहीं रहेगा और हमारे कार्यों में बाधा नहीं पहुँचेगी? यहाँ चार्वाक निम्नोक्त उत्तर देते हैं। शब्द से प्राप्त जितने भी ज्ञान हैं वे सभी अनुमान सिद्ध हैं। किसी भी शब्द को हम इसलिए मानते हैं कि वह विश्वास योग्य होता है। अतः शब्द से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अनुमान की आवश्यकता होती है। वह अनुमान इस तरह का होता है, सभी विश्वास योग्य व्यक्तियों के वाक्य मान्य हैं। यह विश्वास योग्य व्यक्ति का वाक्य है, अतः यह मान्य है। इससे यह स्पष्ट है कि शब्दों के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अनुमान पर अवलंबित होता है, इसलिए शब्द की प्रमाणिकता उसी प्रकार संदिग्ध है जिस प्रकार अनुमान की। अनुमान की तरह हम शब्द को भी विश्वास योग्य मानकर उसके अनुसार अपने कार्य करते हैं। कभी कभी इसी विश्वास के अनुसार कार्य करने से सफलता भी मिल जाती है, किंतु अनेक बार नहीं भी मिलती। अतः शब्द ज्ञान प्राप्ति का यथार्थ और निर्भर योग्य साधन नहीं माना जा सकता। संक्षेप में चार्वाक का कहना यह है, चूंकि यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अनुमान तथा शब्द विश्वास योग्य हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। मेरा तीसरा टॉपिक है तत्व विचार। विश्व के मूल तत्वों के संबंध में चार्वाकों का मत उनके प्रमाण संबंधी विचारों पर अवलंबित है। चूंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसलिए हम केवल उन्हीं वस्तुओं के अस्तित्व को मान सकते हैं जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, जीवन की नित्यता, अदृश्य आदि विषयों को हम नहीं मान सकते, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम केवल जड़ द्रव्यों का ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अतः हम केवल उन्हीं को मान भी सकते हैं। इस प्रकार चार्वाक जड़वाद का प्रतिपादन करता है। इनके मत के अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। पहला, संसार चार भूतों से निर्मित है। जड़ जगत के निर्माण के संबंध में अनेक भारतीय दार्शनिकों का मत है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन पंचभूतों से यह जगत निर्मित है। किंतु चार्वाक आकाश के अस्तित्व को नहीं मानता, क्योंकि इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है। अतः संसार चार प्रकार के प्रत्यक्ष भूतों से ही निर्मित है। इन तत्वों से केवल निर्जीव पदार्थों की ही उत्पत्ति नहीं हुई है, किंतु उद्भिद आदि सजीव द्रव्य भी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। प्राणियों का जन्म तत्वों के संयोग से होता है, मृत्यु के बाद वे फिर भूतों में ही मिल जाते हैं। दूसरा, आत्मा नहीं है। हम ऊपर कह आए हैं कि चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य तथा मानस। मानस प्रत्यक्ष के द्वारा हम आंतरिक भावों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह आंतरिक भावों के ज्ञान से चैतन्य का भी प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य बाह्य जड़ द्रव्यों में नहीं पाया जाता। तो क्या हम नहीं कह सकते कि हमारे अंतर्गत एक अभौतिक सत्ता है जिसे हम आत्मा कहते हैं और जिसका गुण चैतन्य है? चार्वाक स्वीकार करते हैं कि चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, किंतु वे यह नहीं मानते कि चैतन्य किसी अभौतिक तत्व अर्थात आत्मा का गुण है। आत्मा का तो कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जड़ तत्वों से बने जो हमारे शरीर हैं, केवल उन्हीं का प्रत्यक्ष हमें होता है। चैतन्य हमारे शरीर के अंतर्गत है, इसलिए चैतन्य को शरीर का ही गुण मानना चाहिए। चेतन शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए। चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा। आत्मा एवं शरीर के तादात्म्य का ज्ञान दैनिक अनुभवों से भी प्राप्त होता है। मैं मोटा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, ये वाक्य आत्मा और शरीर की एकता को ही प्रमाणित करते हैं। यदि आत्मा शरीर से भिन्न है तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि चैतन्य का अस्तित्व तो किसी भी जड़ तत्व में नहीं पाया जाता, और जब तत्वों में ही इसका अभाव होगा तो उनके योग से बने हुए शरीर में इसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? चार्वाक इसका यह उत्तर देते हैं, जड़ तत्वों के संयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है। यह संभव है कि तत्वों में यदि किसी गुण विषय का अभाव भी रहे तो उसकी उत्पत्ति उस निर्मित वस्तु में हो जा सकती है। पान, चूना, सुपारी आदि में लाल रंग का अभाव है, किंतु इनको जब एक साथ चबाया जाता है तो उनमें लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखने से भी उसमें नए नए गुणों का आविर्भाव होता है। गुड़ में मादकता का अभाव है, किंतु गुड़ के सड़ जाने पर वह मादक हो जाता है। इसी प्रकार जड़ तत्वों का भी समिश्रण यदि एक विशेष ढंग से ही का नहीं छोड़ा जाता, पशुओं के द्वारा ध्वंस हो जाने के डर से कृषि नहीं छोड़ी जाती है, भिक्षुओं से मांगे जाने के डर से भोजन पकाना नहीं बंद किया जाता है। हम लोगों का अस्तित्व शरीर में तथा वर्तमान जीवन तक ही सीमित है, अतः इस शरीर के द्वारा जो सुख प्राप्त हो सकता है वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। परलोक सुख की झूठी आशा में रहकर हमें इस जीवन के सुख को ठुकरा नहीं देना चाहिए। कल म्योर मिलेगा, इस आशा में कोई हाथ में आए कबूतर को नहीं छोड़ता। संदिग्ध स्वर्ण मुद्रा से निश्चित कौड़ी ही अधिक मूल्यवान है। हस्तगत धन को पर हस्तगत करना मूर्खता है। अतः मनुष्य का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक कितना सुख प्राप्त कर सकता है। और अपने दुखों को अधिक से अधिक कितना कम कर सकता है। सफल जीवन वही है जिसमें अधिक से अधिक सुख भोग होता है। अच्छा काम वही है जिसमें अधिक से अधिक सुख मिलता है। बुरा काम वही है जिसमें सुख की अपेक्षा अधिक दुख मिलता है। चार्वाक के इस मत को हम सुखवाद यानी हेडोनिज्म कह सकते हैं। सुखवाद के अनुसार सुख भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कुछ भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि पुरुषार्थ चार हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। चार्वाक धर्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। मोक्ष का अर्थ पूर्ण दुख विनाश है जो मृत्यु होने से ही संभव हो सकता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मृत्यु की कामना नहीं करता। धर्म और मोक्ष को शास्त्र विश्वास योग्य नहीं है। अतः धर्म और मोक्ष को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते। हम केवल अर्थ और काम को अपने जीवन का लक्ष्य मान सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को अर्थ और काम के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। इन दोनों में काम ही अंतिम लक्ष्य हो सकता है। अर्थ अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, यह तो काम प्राप्ति के लिए एक साधन है। इस तरह हम देखते हैं कि चार्वाक शास्त्रों को, धर्माधर्म को तथा परलोक को नहीं मानता, इसलिए वे योगादि कर्मों का भी विरोध करते हैं। इनके अनुसार स्वर्ग पाने के लिए, नरक से बचने के लिए या प्रेतात्माओं की तृप्ति के लिए वैदिक कर्म करना सर्वथा व्यर्थ है। ये वैदिक कर्मों का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि यदि श्राद्ध में अर्पित किया हुआ प्रेतात्मा की भूख मिटा सकता है तो कोई पथिक भोजन की वस्तु साथ साथ क्यों लिए फिरता है? उसका कुटुंब क्यों नहीं उसकी क्षुधा शांति के लिए उसके घर पर ही भोजन अर्पित कर देता है? नीचे की कोठरियों में अर्पित किए हुए भोजन से ऊपर रहने वालों की भूख क्यों नहीं मिट जाती? पुरोहितों का यदि वास्तविक विश्वास है कि यज्ञ में बलिदान किया हुआ पशु स्वर्ग पहुंच जाता है तो वे क्यों नहीं पशुओं के बदले माँ बाप की बलि कर देते हैं ताकि वे स्वर्ग जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाकों के लिए आचार व्यवहार के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है और लौकिक व्यवहार भी सुख के लिए ही है। चार्वाक का नैतिक विचार उनके जड़वाद का ही परिणाम है। पांचवा उपसंहार। ग्रीस के दार्शनिक एपिक्यूरस के अनुयायियों की तरह भारत के चार्वाकों को भी लोगों ने घृणा की दृष्टि से देखा। उन्हें समझने का अधिक प्रयत्न नहीं किया है। सर्वसाधारण में तो चार्वाक शब्द ही निंदावाचक हो गया है, किंतु दार्शनिकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय दर्शन चार्वाक मत का कितना ऋणी है। संशयवाद और अज्ञेयवाद तो स्वतंत्र विचार के परिचायक हैं जो बिना समीक्षा किए हुए प्रचलित मतों को नहीं मानते हैं। दर्शन शास्त्र स्वतंत्र विचार से उत्पन्न है। दर्शन शास्त्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने को सुदृढ़ बनाने के निमित्त संशयवादियों के आक्षेपों को दूर कर संशयवादी जनसाधारण के विचारों को दोषयुक्त बताकर नई नई समस्याएं खड़ी करते हैं। ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान कर दर्शन और भी पुष्ट और समृद्ध हो जाता है। कांट एक प्रख्यात पाश्चात्य दार्शनिक थे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे संशयवाद के ऋणी हैं। उन्होंने कहा है कि ह्यूम के संशयवाद ने मुझे अंधविश्वास की निद्रा से जगाया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि चार्वाक मत ने भारतीय दर्शन को हट विश्वास से बचा गया। हम उसी चर्चा ऊपर कर चुके हैं कि सभी भारतीय दर्शनों ने चार्वाक के आक्षेप को दूर करने का प्रयत्न किया है। चार्वाक मत से ही मानो उनके विचारों के मूल्यांकन की कसौटी बनी हो। अतः चार्वाक मत में दो महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं। एक तो चार्वाक ने अनेक दार्शनिक समस्याएं उपस्थित की, दूसरी इसके कारण अनेक दार्शनिक हट विश्वास से बच सके और अपने विचारों का युक्तिपूर्वक विवेचन कर सके। सुखवाद के कारण ही चार्वाक की निंदा हुई, किंतु सुखभोग कोई घृणा का विषय नहीं है। अन्य लोगों ने भी सुख को किसी न किसी रूप में वांछनीय माना है। यह गर्हित तभी होता है जब यह अश्लील तथा स्वार्थपूर्ण होता है। कुछ चार्वाक निकृष्ट इंद्रिय सुख को ही जीवन का आदर्श मानते थे, किंतु चार्वाक के दो वर्ग थे, धूर्त चार्वाक तथा सुशिक्षित चार्वाक। अतः यह स्पष्ट है कि सभी चार्वाक धूर्त तथा अशिक्षित नहीं होते थे, उनमें से अनेक सुशिक्षित होते थे जो उत्कृष्ट सुखों का अनुसरण करते थे। इसके लिए वे ललित कलाओं का अभ्यास करते थे। कामसूत्र के प्रणेता वात्स्यायन के अनुसार 64 ललित कलाएं होती हैं। सभी चार्वाक स्वार्थांध नहीं होते थे। स्वार्थ सुखवाद सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक होता है। यदि मनुष्य दूसरे के लिए अपने सुख का कुछ भी परित्याग न करे तो सामाजिक जीवन संभव हो ही नहीं सकता। कुछ चार्वाक राजा को ईश्वर मानते थे। इससे यह स्पष्ट है कि वे समाज तथा उसके प्रमुख की आवश्यकता को मानते थे। लोकायतिक दर्शन में दंडनीति तथा वार्ता का भी विचार पाया जाता है। अतः प्राचीन भारत के चार्वाकों में शिष्ट लोग भी थे। वर्तमान यूरोप के प्रत्यक्षवादियों में भी ऐसे लोग हैं तथा प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रेटस के अनुयायियों में भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं था। कामसूत्र के दूसरे अध्याय में वात्स्यायन ने नैतिक विषयों पर विचार किया है। वहां उन्होंने शिष्ट सुखवाद का वर्णन किया है। इन्होंने अपना मत प्रकट किया तथा उसे युक्तिसंगत बनाने की चेष्टा की है। वात्स्यायन ईश्वरवादी थे। वे परलोक को मानते थे, अतः वे साधारण अर्थ में जड़वादी नहीं थे, किंतु वे भी मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानते थे और काम को श्रेष्ठ स्थान देते थे। उनके अनुसार धर्म, अर्थ, काम ये तीन पुरुषार्थ हैं और स्त्री वर्ग का उचित सामंजस्यपूर्ण सेवन करना चाहिए। वे कहते हैं कि धर्म और अर्थ को काम प्राप्ति का साधन मात्र समझना चाहिए। धर्म और अर्थ अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य केवल काम है। वात्स्यायन का सुखवाद इसलिए शिष्ट समझा जा सकता है कि वे ब्रह्मचर्य, धर्म तथा नागरिक वृत्ति को अधिक महत्व देते हैं। इनके बिना मनुष्य का सुखभोग पार्श्विक सुखभोग से कुछ भी भिन्न नहीं है। वात्स्यायन के अनुसार पंचेंद्रियों की तृप्ति ही काम से कुछ भी भिन्न नहीं है। शरीर रक्षा के लिए जिस तरह भूख की शांति नितांत आवश्यक है, उसी तरह इंद्रियों की तृप्ति भी परम आवश्यक है। किंतु इंद्रियों को 64 ललित कलाओं के अभ्यास के द्वारा शिष्ट तथा संयत बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति इन ललित कलाओं का अभ्यास करने का अधिकारी तभी होता है यदि उसने बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तथा वेदों का अध्ययन भी किया हो। शिक्षा के बिना मनुष्य का सुखभोग पार्श्विक सुखभोग से भिन्न नहीं हो सकता। अनेक सुखवादी ऐसे ही होते हैं जो वर्तमान सुख का कुछ भी परित्याग नहीं करते। वे जीवन में उचित सुखभोग करने के लिए बाल्यकाल में किसी कला का अभ्यास नहीं करते हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि ऐसा अधैर्य घातक होता है। ऐसी मनोवृत्ति रखने वाला कृषि उद्योग या बीज वपन भी छोड़ दे सकता है, क्योंकि इसका फल तो शीघ्र नहीं वरन कालांतर में मिलता है। वात्स्यायन के अनुसार अपनी सुख लिप्सा को संयत रखना चाहिए। इसको उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उन्होंने यह दिखलाया है कि यदि हमारी प्रवृत्तियां धर्म और अर्थ के अनुकूल न हों तो वे सर्वनाश का कारण होती हैं और सुखभोग की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक की तरह वात्स्यायन यह भी कहते हैं कि हमें सुखभोग की अवस्थाओं तथा साधनों का विचार विश्लेषण करना चाहिए। कोई कार्य सफल तभी हो सकता है जब उसका आधार शास्त्र अर्थात विज्ञान पर प्रतिष्ठित होता है। यह सही है कि जनसाधारण विचार या अध्ययन करके काम नहीं करते हैं, किंतु उनके बीच जो थोड़े भी वैज्ञानिक होते हैं उनके विचार अज्ञात रूप से जनसाधारण तक पहुंच ही जाते हैं। साधारण लोग उनसे लाभ उठा ही लेते हैं। इस तरह देखते हैं कि वात्स्यायन एक विचारशील सुखवादी थे। ऐसे लोग ही शिष्ट चार्वाक में परिगणित हो सकते हैं। सामान्य फलसूत्र आदि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के संशयवादियों अज्ञेयवादियों, वितंडावादियों तथा स्वेच्छाचारवादियों का उल्लेख मिलता है। पुरन कश्यप पाप पुण्य या किसी प्रकार का नैतिक दायित्व नहीं मानते थे। मक्खली गोसाल पुरस्कार नहीं मानते थे और नियतिवादी थे। अजीत केस कंबली का मत था कि मनुष्य जड़ द्रव्य से उत्पन्न है और विनाशशील है। उनका यह भी कहना था कि यथार्थ ज्ञान असंभव है और सत्कर्मों का फल नहीं होता। संजय वेलट्ठी पुत्र को किसी प्रचलित मत के विषय में पूछने पर वे चतुष्कोटि न्याय से उत्तर देते थे। पहला, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। दूसरा, मैं इसे अस्वीकार भी नहीं करता हूँ। तीसरा, एक साथ स्वीकार अस्वीकार दोनों में कुछ नहीं करता हूँ। चौथा, मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मैं इसे न स्वीकार करता हूँ न अस्वीकार करता हूँ। इन मतों को हम धूर्त चारवाक का दृष्टांत समझ सकते हैं। बुद्ध ने इन सबों का खंडन किया। हाल ही में तत्व पल्लव सिंह नामक एक प्राचीन पंडुलिपि मिली है जो अब गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में प्रकाशित रूप में उपलब्ध है। वह चरम संशयवाद का मनोरंजक नमूना है। उसके प्रणेता जयरासी संभवतः ईसा के बाद 8वीं शताब्दी में परले सिरे के चारवाक या लौकायतिक थे। उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रामाणिकता को भी चुनौती दी। भौतिक तत्वों की सत्ता वे स्वीकार नहीं करते। इस तरह सामान्य चारवाक संशयवाद को उन्होंने पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। कठोर तर्क के कशाघात से उन्होंने सर्वसम्मत प्रमाणों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बुद्धिवाद विरोधी व्यवहारवादियों की तरह वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी सिद्धांतों का निषेध करने पर भी व्यवहारिक जीवन पूर्ववत मजे में चलता रहेगा। चारवाक के प्रमाण विज्ञान की देन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चारवाक के नाम से उनके विपक्षियों ने अनुमान के खंडन के लिए जो युक्तियां दी वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस तरह की युक्तियां आधुनिक पाश्चात्य तर्कशास्त्र में भी पाई जाती हैं। हम देख चुके हैं कि चारवाक के अनुसार अनुमान के निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पाश्चात्य देशों के प्रैग्मेटिस्ट तथा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आदि अनेक संप्रदायों के विद्वानों का भी कुछ ऐसा ही मत है। तदेवं उपलब्धेषु तत्वेषु अविचारित रमणीया सर्वे व्यवहारा घटन्ते।